ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ज्ञानतिमिरन्धस्यज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासदिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के भक्तिवेदांत हॉस्पिस के उद्घाटन के बाद वाले पहले प्रभात जागृति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 31 अगस्त 2010 है और आज से हम पुनः बड़े उत्साह और भक्ति और जोश के साथ ये प्रभात जागृति कार्यक्रम आरंभ कर रहे हैं। ये हर सोमवार को होगा लेकिन आज मंगलवार को हो रहा है और हर सोमवार को उसको आयोजित किया जाएगा और जब भी हम आएंगे बीच में तो बीच में और एक प्रोग्राम भी हम करेंगे इसको। तो ये जो कार्यक्रम है ये इतना ज़रूरी कार्यक्रम है क्योंकि जब तक जो सदस्य काम करते हैं हमारी संस्था में जब तक वो आध्यात्मिक दृष्टि से पूरी तरह चार्ज नहीं होते हैं संपृक्त नहीं होते हैं तब तक हमारी बिल्डिंग इतनी सुंदर होगी तो भी उसका कुछ लाभ नहीं मिलेगा। बिल्डिंग जो सुंदर होती है वो तो कलर भी देते हैं सुंदर से उसको अच्छी खिड़कियाँ बना देते हैं उसको बहुत सारा नक्शा बना देते हैं गार्डन बना देते हैं उससे सुंदर तो बनता ही है वो लेकिन उसका जो वास्तव सौंदर्य जो है उसका वो उसके अंदर काम करने वाले लोगों की चेतना है उसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी जो भावना है उसका जो भाव है उससे उस वास्तु का सौंदर्य बढ़ जाता है। अगर वो भाव अगर बहुत दिव्य दृष्टि से बना हुआ है तो इस वास्तु में प्रवेश करते ही लोगों को उसका अनुभव होगा एक आश्रय की भावना उत्पन्न होगी एक शांति का अनुभव होगा एक आशा नजर आएगी ठीक है यहाँ पर हमारा ठीक से काम होगा विश्वास उत्पन्न होगा। ये सब आध्यात्मिक गुण हैं। ये आध्यात्मिक गुण जो है ना वो हम लोग खरीद नहीं सकते मार्केट में। एक लाख रुपए आध्यात्मिक गुणों के लिए बजट कर दो ऐसा नहीं होता है ये हृदय से उत्पन्न होते हैं और जोर जबरदस्ती दंड करके दंडा दिखा के ये सब उत्पन्न नहीं होता है ये हृदय से उत्पन्न होता है। इसको प्रेरणा अंदर से होनी चाहिए तो इसलिए भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में भी इसी तरह से हम कार्य करते हैं क्योंकि आध्यात्मिक वातावरण जो है ना वो आत्मा का मूल स्वभाव है। चेतना जो है ना आध्यात्मिक चेतना ये आत्मा का गुण है और जैसे ही आत्मा किसी गलत वातावरण में प्रवेश करती है तो उस पर उसका गलत परिणाम होता है, उसका भाव बदल जाता है पूरा। आप ट्रेन में जाओगे तो सब लोग टीवी मतलब अखबार पढ़ रहे हैं, कोई कुछ टीवी वो कंप्यूटर में पिक्चर देख रहा है, कोई कुछ और कुछ कर रहा है, बाहर जाके सिगरेट पी रहा है, तो एकदम भाव अपना बदल हो जाता है तुरंत। लेकिन मंदिर में जाएंगे तो, हाँ राधा रमन जी के मंदिर जाएंगे तो, कृष्ण बलराम जी के मंदिर जाएंगे तो क्या होता है, तुरंत ऐसा भक्ति भाव, नमस्कार, प्रार्थना अपने आप उत्पन्न हो जाती है ना। आश्रय भगवान का लेना, भगवान के चरणों में समर्पित होना, ये सब भाव जो है अपने आप उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो वातावरण आत्मा के उन्नति के लिए अनुकूल है। तुरंत आत्मा अपना जो मूल प्रकाश है वो दिखाने लगती है उसके अंदर। उसी तरह से हमको यहां पर ऐसे वातावरण उत्पन्न करना है जिससे हर व्यक्ति का आध्यात्मिक जो भाव है वो विकसित हो जाए अपने आप ही स्वतः। लेकिन ऐसे नहीं हो कि यहां पर आते ही हमारा द्वेष भाव बढ़ जाता है, यहां पर आते ही हमारा असहयोग का भाव बढ़ जाता है, यहां पर आते ही हमारा किसी कोई नेगेटिव भाव बढ़ जाता है। ये कब होता है? ये सब अब हम लोग जो वातावरण निर्माण करते हैं ना एक दूसरे के लिए, उससे उत्पन्न होता है। किस प्रकार का वातावरण यहां उत्पन्न करना है ये पूरी तरह से हमारे में से हर एक व्यक्ति के हाथ में है ना। इज इट ऑल राइट? समझो अभी आप रिलायंस में जाएंगे तो रिलायंस कंपनी में कैसा है, जाने का टाइम है, आने का कोई टाइम नहीं है, और आपको बोलेंगे ये तनख्वाह मिलेगी आपको, लेकिन आपको उसका दुगना आपसे काम करके लेंगे, कुछ बोल नहीं सकते कोई, कोई किससे बात। और मोटो क्या है, पैसे के लिए कुछ भी, एनीथिंग, किसी भी हद तक जाओ, बाकी बिजनेस होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, मनी इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, उनका कल्चर है। हमारा कल्चर क्या है? हमारा कल्चर जो भी हमारे पास में आएगा वो भगवान भावना से भाव प्रभावित हो जाएगा, ये हमारा कल्चर है। और ये हमको उत्पन्न करना है खुद को। ये मंदिर इतना सुंदर बना लिया है, ये तब सुंदर बनेगा जब इसमें आने वाले जो आप लोग हो उनकी भावना श्रेष्ठ तरीके से होगी, तो ये मंदिर और सुंदर होगा। इसमें आते ही आपको लगेगा अरे यहाँ तो भगवान अपने आप को प्रकट कर रहे हैं, नहीं तो आपको लगेगा डेड मंदिर है, इसमें अंदर ठाकुर जी के अंदर भी कोई दम नहीं है और किसी चीज़ में कोई जान नहीं है। हाँ, ये सब आध्यात्मिक वस्तुएँ हैं। और नेचुरली हम लोग वृंदावन धाम में तो है ही, उसका प्रभाव हमको तो फ्री में मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर वृंदावन धाम में कोई अच्छा महल बनाया जाए और सब लोग शराब उसके अंदर बैठ के पिए, सब लोग व्यभिचार करें, तो क्या लगता है क्या होगा? आपको धाम जो है अपना जो प्रभाव है उसको सिमट लेगा, उसको अप्रकट कर लेगा। और जिस जगह पर इसी धाम के अंदर भजन होता है, सिंसियर सहयोग होता है, प्रामाणिक सहयोग होता है, एक दूसरे के लिए प्रेम होता है, दूसरों की सेवा करने का भाव होता है, तुरंत जो है धाम अपना प्रभाव जो है, अपने जो वैभव है उसको प्रकट कर देता है। तो जिस धाम में जिस जगह पर गुंडागर्दी होती है उस धाम लुप्त है, उस जगह के लिए धाम अप्रकट है। और जिस जगह संत लोग भजन कर रहे हैं उस जगह धाम जो है पूरी तरह से प्रकट हो जाता है। तो वे अपने हाथ में है, हम भजन करेंगे तो हमारे लिए भी धाम अपना गौरव प्रकट करेगा, सब हमारे हाथ में है। जब मान मंदिर में जब रमेश बाबा जी रहने लगे तो मान मंदिर कितना पावरफुल हो गया है, जहां जाते ही लोगों को लगता है कि यहां पर कुछ है। अभी वो अभिन्न नहीं है, वो मतलब भिन्न नहीं है, वही है धाम श्री जी का। लेकिन जहां साधु भजन करता है वो धाम की गौरव को बाहर निकालता है और लोगों के लिए प्रस्तुत कर देता है, जो भी आएगा उसके लिए धाम का गौरव जो है प्रस्तुत है सबके लिए। हमारा भी कार्य यही होना चाहिए, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। भगवान चाहते हैं कि उनका जो गौरव है वो हर प्रकार से जीवों के लिए उपलब्ध हो, ये उनका मिशन है। उसके लिए बार बार आते हैं, वो बार बार उतार लेते हैं, क्योंकि उनका जो दिव्य धाम है, उनकी लीला, उनका प्रभाव, उनका वैभव वो यहाँ पर वृंदावन धाम के रूप में प्रकट करते हैं पहले, फिर स्वयं आते हैं और लीला करते हैं उसके अंदर, है ना। संतों को भेजते हैं, ग्रंथों को भेजते हैं, अपने नाम को भेजते हैं, प्रसाद को देते हैं, कितना कार्य करते हैं वो एक एक मिशन के लिए कि भटका हुआ जीव जो है मेरे पास फिर लौट गया है, फिर घर लौट गया है। तभी तो जन्माष्टमी का वातावरण है, अभी हमारा उद्घाटन होने के पश्चात दो तीन दिन में ही जन्माष्टमी है, ब्रज में एक तारीख को है, वैष्णव कैलेंडर में इस्कॉन के एक दिन बाद में है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो भगवान रोज जन्म लेते हैं, जब हम रोज नाम लेते हैं तो रोज आपके जवान पे जन्म लेते हैं, रोज आपके हृदय में जन्म लेते हैं। हाँ, जन्माष्टमी तो हमारे लिए एक ऐसा एक बहाना है उनको याद करने का। लेकिन ठाकुर जी रोज अवतरित हो रहे हैं, जब जब आप उनको पुकारते हैं तब तक वो अवतरित हो रहे हैं, है कि नहीं। तो ये जन्माष्टमी का वातावरण का क्या मतलब है कि भगवान जो है वो अनंत ब्रह्मांडों में अनंत दिन अनंत समय तक लीला करते रहते हैं, कहीं जन्म ले रहे हैं, लीला कर रहे हैं, कहीं बाल लीला कर रहे हैं, कहीं किसी को राक्षस को मार रहे हैं, कहीं महाभारत लीला कर रहे हैं, कहीं द्वारका लीला कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं विवाह कर रहे हैं 16108 पत्नियों के साथ में, अनंत लीला है। ऐसा नहीं कि यहाँ भी जन्म हो रहा है तो और कहीं नहीं हो रहा है, सब जगह पे कण कण में उनकी लीलाएं चल रही हैं। ये उनका एक ड्रामा ट्रूप है जो वो गौलोक से लेके आते हैं और यहाँ पर वो सब जो उनकी लीलाएं हैं उसको दिखाते हैं, सबको प्रस्तुत करते हैं हमारे लिए। उससे क्या लाभ होता है, जीव जो उनको भूल चुका है वो फिर उनको याद आती है, अरे ये तो मेरा वो घर है, इसको छोड़ के मैं आया हूँ, कितना सुंदर वातावरण, लीला, आनंद, प्रेम का जो आदान प्रदान है, सहयोग है, एक दूसरे की सेवा भावना है, आश्रय है, ये सब जो है मैं खो चुका हूँ और यहाँ पर दुख भोग रहा हूँ, चलो फिर ठाकुर जी के बने हम, फिर उनके बन जाएं, फिर उनका आश्रय लें, फिर उनकी गोद में सहारा लें। इसलिए भगवान जन्म लेते हैं और लीलाएँ करते हैं। तो जन्माष्टमी के लिए फिर कैसे हम तैयार करें अपने आप को, जन्माष्टमी मतलब ये हमको एक मौका है कि पुनः पुनः अधिक प्रभावी तरीके से कैसे हम ठाकुर जी का जन्म जो है रोज हमारे हृदय में हो, ऐसे तैयारी करें, इसलिए जन्माष्टमी बनाई गई है। आप बोले कहाँ जन्माष्टमी, हमको दिखाई नहीं पड़ते ठाकुर जी कहाँ जन्म ले रहे हैं, तो मंदिर में अभिषेक होता है, ऐसा कोई दुष्ट दिखते नहीं कि यशोदा जन्म दे रही है, देव की जन्म दे रही है और वसुदेव जा रहा है, दिखाई नहीं पड़ता है हमको, हमारे आंखों से ओझल है पूरा वो, लेकिन संत लोग जो है वो अपनी वाणी से उनको प्रकट करते हैं कि ठाकुर जी जन्म कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, कैसा उनका जन्म दिव्य है। हाँ, जन्म कर्म तमे दिव्यम एवं यो वेत तत्वतः, उनका जन्म हमारे जैसा नहीं है, वो प्रकट करते हैं उस सत्य को, फिर हम समझते हैं हाँ सही बात है, वो हमारे जैसा जन्म लेते नहीं, वो तो प्रकट हो जाते हैं चार भुजा के साथ, अलंकारों के साथ, मुकुट के साथ, शंख चक्र पद्म गदा के साथ, माता के सामने दर्शन देते हैं, फिर माता बोलते हैं दो भुजाओं में आ जाओ, तो बालक बन के तुरंत प्रकट हो जाते हैं, फिर ये जाओ मुझे जमुना जी के पार, तो जमुना जी से पार ले जाते हैं, गोकुल में यशोदा जी के गोद में रखते हैं, हाँ फिर वहाँ पलते हैं, वहाँ बड़े हो जाते हैं। कितना सुंदर कथा है, कितना सुंदर, अनंत बार सुनो, कभी आपको उसका बोर नहीं होगा, कभी लगेगा नहीं बस हो गया और क्या बताओ, हाँ क्योंकि ये उस लीला का ये दिव्यता है कि वो अनंत बार कहने पर भी वो वासी नहीं होती, हमेशा फ्रेश रहती है वो, नव यौवन, पवित्र रहती है, शुद्ध रहती है, हमेशा आत्मा को उत्साह देती है, हमेशा आत्मा को प्रभाव देती है, हमेशा आत्मा को भगवान की ओर खींचती है, जितनी बार कहो उतनी और मधुर हो जाती है वो, हाँ कितनी मधुरता है उसके अंदर। तो हमारा परम भाग्य है कि ठाकुर जी हमारे लिए आते हैं, वो क्या जरूरत है, वो तो एक कदम भी गौलोक के बाहर रखते नहीं, तो यहाँ कैसे आते फिर, वो गौलोक का हिस्सा यहाँ प्रकट करते हैं फिर उसमें रहते हैं, मतलब उससे बाहर जाते नहीं ये दिव्यता है उनकी। अब मैं बम्बई से आया हूँ, मैं मेरा घर थोड़ा लेके आया हूँ, 2 बेडरूम किचन सृष्टि कॉम्प्लेक्स नंबर 2, वो तो उधर ही है, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, ढूंढ रहा हूँ कहाँ रहूँ, MBT में रहूँ कि इधर रहूँ कि उधर रहूँ। ठाकुर जी जब आते हैं अपना घर भी लेके साथ में आते हैं, अपना घर, अपना परिवार, अपना शस्त्र अस्त्र, अपने पार्षद, अपने मित्र, अपने लीलाएँ, अपना धाम, सब लेकर आते हैं, आ जाओ, और हमको उसका दिव्य अनुभव देते हैं। तो इनको समझना बहुत जरूरी है और यही समझना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये समझना हमारे जीवन का लक्ष्य है, यही परिपूर्णता है, यही आनंद का उगम है। बाकी तो सब कुछ प्रपंच है, हम लोग नौकरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, थोड़ा धन कमा रहे हैं, परिवार को पाल रहे हैं, अपने शरीर को पोस रहे हैं, ये सब जो है ना वो साइड बिजनेस भी नहीं है, मतलब चलो चलना है, अभी क्या कर रहे हैं, करना है, सुबह स्नान भी करना है, लेटरिन भी जाना है, मुंह भी धोना है, ये शरीर का धर्म हो गया है, ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है, ये तो बाय द वे करना है अपने को, लेकिन करना क्या है मेनली, आपको ठाकुर जी के लिए प्रेम उत्पन्न करना है, ठाकुर जी के लिए सेवा करनी है, सब जीवों के अंदर ठाकुर जी को देखना है, जो हमारे साथ में काम कर रहे हैं उनके अंदर देखना है, जो मरीज आ रहे हैं उनके अंदर ठाकुर जी को देखना है। ये उत्तम अधिकार का लक्षण है। उत्तम अधिकार का लक्षण मतलब क्या होता है कि जो न केवल ठाकुर जी के विग्रह में ठाकुर जी को देखता है, पर ठाकुर जी के भक्तों के अंदर भी ठाकुर जी को देखता है, न केवल भक्तों में देखता है लेकिन जो तथाकथित, मतलब सब लोग भगवान के भक्त हैं, हाँ कोई ऐसा अभक्त नहीं है, लेकिन कोई भूल चुके हैं, कोई याद आ गई उनको अलग अलग, तो जो लोग भूल भी चुके हैं उनके अंदर ही भगवान को देखता है। और यहां तक नहीं कि वो व्यक्ति जो जड़ वस्तु है उसके अंदर भी भगवान को देखता है। क्या उसका प्रमाण है, जब स्नान करेगा ना तो पैर से बकेट कभी नहीं ढकेलेगा वो, हाथ से रखेगा उसको नीचे, वो जानता है इसमें भी ठाकुर जी हैं। किसी वस्तु को, किसी टेबल को, किसी वस्तु को, किसी दंडे को ऐसे पैर से नहीं लाएगा वो, क्योंकि वो देखता है कि अरे कण कण में समाये, ठाकुर जी शास्त्र में लिखा है, तो खाली थोड़ी बुक में लिखा है उसको कि बुक में पढ़ते रहो, उसको अमल मत करो। अमल क्या है उसका, कि ना केवल ठाकुर जी के विग्रह में, ना केवल भक्तों में, ना केवल अभक्तों में, लेकिन हर जड़ वस्तु में भी वो ठाकुर जी को देखता है। ये उच्च अधिकारी, उच्च उत्तम अधिकारी की अवस्था है। और ये मत समझना कि हम तो भाई कनिष्ठ अधिकारी, हम तो भाई पतित हैं, ऐसा मत समझना। ये हमारे लिए मुमकिन है, ऐसा नहीं समझना कि ये नामुमकिन वस्तु है। जैसे हम पैसे का व्यवहार करते हैं तो जानते हैं ये ठाकुर जी की लक्ष्मी है, इनको उनकी सेवा में लगाना है, कोई ऐरे गरे काम में लगाना नहीं है, जिसमें शराब है या चोरी है, डकैती है, कुछ लूटमार है, कोई ऐसे चीटिंग है, उसमें लगाना नहीं है उसको, ठाकुर जी की सेवा में लगाना है। हमारे प्रभु जी कितने ख्याल रखते हैं उसका, कि हर रुपया, हर पैसा जो है वो ठाकुर जी का है, लक्ष्मी जी है, स्वयं उनकी सेवा करनी है। ये उत्तम अधिकारी की चेतना है। और जो घटिया आदमी हो क्या सोचेगा, जितना लेना है उतना लूटो, जितना मिलता है उतना ले लो, जितना गड़बड़ कर सकते अकाउंट के अंदर करो, जेब में भरो। ये जो है वो नारकीय बुद्धि कहते हैं उसको। नारकीय बुद्धि मतलब क्या है, कि वो जो भी है ठाकुर जी का वो अपना हो जाए, मेरे भोग के लिए आ जाए। अरे क्या ठाकुर जी, लकड़ी में क्या ठाकुर जी, पत्थर में ठाकुर जी क्या होते हैं, अरे गुरु क्या है, सब ये ना बेकार चीजें हैं, उसको नारकीय बुद्धि कहते हैं। वो इसमें रहते हुए भी नरक में रह रहा है, उसकी चेतना ही वैसी है। लेकिन हमको इस धाम का, इस धाम में होने वाले उत्सवों का, हर वस्तु का लाभ लेके क्या सोचना है, कि हमको ठाकुर जी के कैसे बनना है, कैसे उनके बने, कैसे हमारे पास जो भी कुछ है ठाकुर जी ने दिया हुआ वो उनकी सेवा में लगाए, हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारे विचार, हमारा धन, हमारा शरीर, हमारे हाथ पांव, हमारी आंखें, हमारे कान, जो भी हमको ठाकुर जी से प्राप्त हुआ है उनकी दया से, वो सब उनकी ही संपर्क में, उनकी ही सेवा में जोड़ दें हम उसको, वो परिपूर्ण अवस्था है। चाहे हम पुरुष शरीर में हो, स्त्री शरीर में हो, जवान शरीर में हो, बुढ़े शरीर में हो, सुंदर शरीर में हो, कुरूप शरीर में हो, पतले शरीर में हो, मोटे शरीर में हो, रोगी शरीर में हो या आरोग्य संपन्न शरीर में हो, हर अवस्था में देखना है कि हम भगवान के अंश हैं। ये अगर समझते हैं तो भगवान का जो अवतार भगवान ने किया हुआ है, भगवान प्रकट हो रहे हैं, वो सफल है, वो कभी असफल नहीं है, लेकिन हमारे लिए असफल हम कर सकते हैं। सब तरह से वो यशस्वी है, भगवान का लीला जो है कीर्तिमान है भगवान का लीला, लेकिन हमारे लिए वो तब यशस्वी होगा जब हम उस चेतना में आएंगे। अल्टीमेटली श्री वृंदावन धाम क्या है, श्री वृंदावन धाम एक चेतना की अवस्था है, वो ज्योग्राफिकल भी है, भौगोलिक स्थिति भी है। वो हम देखेंगे आगे मंदन टेर है, यहाँ पर परिक्रमा रास्ता है, यहाँ पीछे वन है, ये सभी है, लेकिन वास्तव रूप में क्या है, वो एक चेतना की अवस्था है। वो धाम की चेतना और आपकी चेतना मिल गई तो सब कुछ धाम ही धाम है, आपका हृदय भी धाम है, आपके आजूबाजू भी धाम है, सब लोग आपके आसपास जो है वो सब पवित्र हैं। ये सब जो है चेतना की जो स्थितियां हैं, यही समझना हमारा जीवन का उद्देश्य, और इसी को लिए कोशिश करते रहना, इसी के लिए प्रयत्न करते रहना, इसी के पीछे लगे रहना लगातार, ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। और ये हमारा भाग्य है परम, कि हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर हमको ऐसा वातावरण मिल रहा है। हाँ, इस वातावरण को कीमत नहीं होती कोई, चलो भाई सैलरी में से 10% जो है इस वातावरण के लिए कट करते हैं, हाँ जैसे प्रोविडेंट फंड कट करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस कट करते हैं, आध्यात्मिक वातावरण के लिए 10% कट करते हैं, ऐसा नहीं है। ठाकुर जी उसको चार्ज नहीं करते तो हम कैसे चार्ज करेंगे उसको। ठाकुर जी अपना नाम फ्री में दे रहे हैं, ठाकुर जी अपना ग्रंथ फ्री में दे रहे हैं, ठाकुर संतों को फ्री में भेज रहे हैं, ठाकुर जी सब वातावरण यहाँ पर फ्री में उत्पन्न कर रहे हैं, तो हमें क्या अधिकार है उसको चार्ज करने का। लेकिन क्या हम उसको ले रहे हैं क्या, तो ठाकुर जी फ्री में दे रहे हैं उसको हम ले रहे हैं क्या, नहीं हम लेने में चूक रहे हैं। हम सोच रहे, कई बोलते ब्रजवासी लोग, अरे प्रभु जी क्या वृंदावन में रखा है, हमें बम्बई ले चलो प्रभु, बम्बई ले चलो, यहाँ पर क्या रखा है, आप तो बम्बई रहते हो, तो बम्बई के लोग क्या कहते हैं, प्रभु जी हमको अमेरिका ले चलो, क्या बम्बई में रखा है, इंग्लैंड ले चलो, क्योंकि चेतना का एंटीना जो है ना, एंटीना वो अलग दिशा में लगा हुआ है, इसलिए वो सब तो अलग दिखाई पड़ता है उसको, सब अच्छा लगता है, सुंदर सुंदर औरतें, आदमी, सफ़ेद चमड़ी, पैसा, डॉलर, यही जीव जीवन है हमारा। लेकिन हमारा असली धन जो है ना, वो कस्तूरी मृग की तरह है। कस्तूरी मृग मालूम है आपको, जानते हैं कस्तूरी, उसके नाभि में कस्तूरी होती है और इतना सुगंध देती है, बेचारा कस्तूरी मृग जो है पूरे जंगल में घूमता है, जगह जगह छान मारता है, कहां से सुगंध आ रही है, कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, लेकिन उसको आखिर तक पता चलता नहीं है, क्योंकि वो अपनी ओर मुड़के देखता ही नहीं है, सब बाहर की ओर देख रहा है वो, उसकी चेतना बाह्य विभाजित हो गई है। जैसे ही वो बाह्य छोड़ के अंदर देखेगा, अरे तो इधर ही है और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। वैसे हमारी अवस्था है, हमारे हृदय में भगवान है, हमारे हृदय में भगवत चेतना है, भगवत प्रेम विराजमान है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहुनाम विदुधाति कामान, हमेशा के लिए वो हमारे हृदय में बसे हुए हैं, बस हम लोगों ने उनको अप्रकट करके रखा है हमारी वासनाओं के द्वारा। जैसे ही ये हट गए और सेवा भाव में आ गए, तुरंत वो प्रकट हो जाते हैं, अपने आप को बताते, हाँ भाई मैं अंदर ही हूँ, डरना मत, मैं ही हूँ, बैठा हूँ आपके लिए। हाँ, आप चाहे कीड़ा मकोड़ा बन जाओ, किसी योनि में जाके सड़ो, फिर मैं आपके साथ में हूँ। ऐसा हो गया, मित्र हो सकता है क्या? हाँ, अरे कैसे मित्र होते हैं, जरा थोड़ा पॉकेट में पैसा कम हो गया तो मित्र थोड़ा भाग जाते हैं। हाँ, थोड़ा पावर आपकी कम हो गई, नौकरी चले गई, सब मित्र गुल हो जाते हैं, कोई दिखाई नहीं पड़ता है। ये एक ऐसा मित्र है, उसको कहते हैं सुरुद। हाँ, सुरुदम सर्वभूतानाम, कितना एक भूत के एक जीव के लिए नहीं है, सर्वभूतानाम जितने भी जीव हैं, जितने भी देवता हैं, जितने भी राक्षस हैं, जितने भी दैत्य हैं, जितने मानव हैं, जितने पंछी हैं, जितने कीड़े मकोड़े हैं, सर्वभूतानाम सुरुदम सर्वभूतानाम, केवल हृदय नहीं है, सुरुद है मतलब सबके सच्चे मित्र हैं वो। कितनी भयंकर अवस्था में आप जाएंगे, नरक की यातना भोगेंगे, फिर भी आपके हृदय में आपका साथ देंगे, दुख में सुख में कष्ट में पीड़ा में सब जगह पे। तो ऐसे मित्र को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो क्या जीवन में मतलब है, हमारे जीवन व्यर्थ है हमारा पूरा। जो मित्र हमारा साथ देता है उसको भूल कर हम बाकी सब टेम्पररी मित्रों को जोड़ लेते हैं, जो हमको दगाई देने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, या अगर बहुत साथ देते हैं तो मृत्यु के द्वारा हम हमारा वियोग होगा, होता है ना, तो माँ है, पिताजी है, पत्नी है, बच्चे हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक मृत्यु आएगा और आपसे उनको जुदा कर देगा, तो मित्रता वो अदा नहीं कर सकते आपके प्रति, करना चाहते लेकिन है किधर, आप चले गए वो समय के साथ। तो इस मित्र के साथ में हमको मित्रता करनी है। जन्माष्टमी, राधाष्टमी, हाँ, होली, गिरिराज पूजन, ये सब जो उत्सव आते हैं वो सभी हमको उनके साथ दोबारा जोड़ने के लिए एक मौका है, और विविधता के साथ में है, वो भी बोरिंग सेम चीज नहीं है, अलग अलग है, हर समय नया है, हर ये नव यवन है, हर नव नवायमान है वो, तो मौका दिया हमको, विविधतापूर्ण है, कोई उसमें सेम चीज नहीं है। जन्माष्टमी भी जो है अलग अलग है, हर समय अलग अलग आनंद है उसका, अलग प्रकार का स्वाद है उसके अंदर, क्योंकि भगवान जो है वो विविधतापूर्ण है, पूरा वैविध्य है उनके अंदर, विविधता है पूरी, कोई समानता नहीं है, है वैसे ही लेकिन बांसुरी बजाते हैं, लेकिन हर रोज जो धुन बजाते हैं वो अलग रहती है, हर धुन में उनका अलग पुकार है, अलग भाव है, अलग आनंद है, हर रोज कोई रिपीट नहीं है उसके अंदर। इतने हमारे ठाकुर जी इतने सुंदर और इतने महान है, है ना। तो आइए हम सब मिलकर जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में अपनी चेतना को तैयार करें कि जन्माष्टमी केवल ऐसे नहीं है, ठीक है जन्माष्टमी हो रहा है क्या, वर्ड में इतना व्रत भी रखना क्या है, चलो रात को कब 12 बजने का भोजन मिलेगा क्या मालूम अरे जन्माष्टमी तो बहुत बोरिंग चीज़ है यार, वो गौर पूर्णिमा बढ़िया है, वो शाम को व्रत खत्म हो जाता है, अरे जन्माष्टमी तो 12 बजे तक 24 घंटे भाई बहुत कष्ट की बात तो ये जन्माष्टमी नहीं है ऐसा सोचेंगे तो वो क्यों व्रत रखते हैं, अरे बिल्कुल टाइम पास नहीं करना है, खाने पीने हजम करने में कुछ नहीं करना है, बनाने में खरीदने में कुछ नहीं करना है हमको, पूरा दिन उनकी ध्यान में रहना है, उनके स्मरण में रहना है, इसलिए व्रत करते हैं वो, कि समय व्यर्थ ना हो जाए उस दिन, बनाने में खाने में धोने में हजम करने में नींद आने में वो सब नहीं करना है, उस दिन एक दिन छुट्टी लेके पूरा दिन ठाकुर जी का विचार करना है, इसलिए व्रत है वो उनके सम्मान में भी है वैसे, कि भाई आप आ रहे हैं, आप जन्म ले रहे हैं, आपके सम्मान में हम आपके हमारी चेतना आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, ये भावना चाहिए। हम तो प्रार्थना करते हैं 2-3 दिन तक कि हमारा व्रत जो है वो पीड़ा में ना हो, मतलब सुनो बहुत व्रत कर रहे हैं और आपको बहुत भूख लग रही है, तो हमारा मन क्या रहेगा, लड्डू कब मिलेगा, महाप्रसाद कब मिलेगा, हाँ कब वो क्या क्या भोग लग रहा है, कब 12 बजेंगे, तो हमारा चेतना कहाँ हो गया, अलग हो गया ना, किधर भी कहीं जगह और चला गया चेतना हमारा। लेकिन हमको भगवान को प्रार्थना क्या करनी है कि मैं व्रत करूंगा निर्जला, लेकिन मुझे आपका मेरा ध्यान जो है केवल आपके चरणों में होना चाहिए, बस आपकी लीलाओं में आपके नाम में मैं व्यस्त रहना चाहता हूँ, तो आपका व्रत जो है सफल है, इस प्रकार से व्रत करना है। और भगवान का अवतरण जो है वो उत्सव के रूप में मनाना है। तो हम शायद 21 सितंबर को मनाएंगे ना। हाँ, उनको लोग कुछ प्रश्न पूछते हैं, अरे आपके मंदिर में कभी कभी दो दो महीने तो जन्माष्टमी चलती रहती है, कभी ये सबर्ब में, कभी उपनगर में, कभी इधर, कभी उधर, कभी हॉस्पिटल में, कुछ है ही नहीं डेट वेट कुछ। बोले जन्माष्टमी जो है ना वो एक चिरंतन घटना है। हाँ, वो आप साल भर मना सकते हो उसको। राधाष्टमी, जन्माष्टमी, जगन्नाथ रथ यात्रा, वो जगन्नाथपुरी के लोग बोलते हैं अरे आप लोग वो तिथि छोड़कर बाकी तिथियों में जगन्नाथ की रथ यात्रा करते क्यों हैं, भाई शास्त्र के विपरीत है ये। ऐसा नहीं है, वो चिरंतन चल रहा है रथ यात्रा उनका, हम खाली कभी कभी देखते हैं उसको होते होते बीच बीच में। वो भगवान रथ में चिरंतन काल के लिए सवार हैं और भक्तों के उद्धार के लिए सब जगह जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, निहार रहे सब लोगों को। उसी तरह जन्माष्टमी है, जिस दिन भगवान की याद हो गई आपको उस दिन जन्माष्टमी है। जिस दिन उनको आपने हृदय से पुकारा ध्यान पूर्वक, एक माता पिता धन मतलब ना, माता पिता बंधु सब सखा बोलते ना उनको, तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम्हें मैं माता, तुम्हें क्या, तुम्हें मैं बंधु सखा, तुम्हें वो, हाँ सब आप ही हो, माता पिता बंधु सखा मित्र सब कुछ आप हो। जिस दिन आपने उनको याद किया वो दिन जन्माष्टमी है। सुबह उठते ही हरे कृष्णा बोलते ही बिस्तर से उठे, जन्माष्टमी हो गई। तो वो दिन जो है जन्माष्टमी का, वो हर रोज जन्माष्टमी बनाने के लिए हमको प्रयास करना है, तब वो हर रोज की जन्माष्टमी आप उत्सव मना सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि एक भक्त के लिए हर एक दिन नया उत्सव है। एवरी डे इज अ फेस्टिवल इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। एवरी सिंगल डे आपकी सेवा, आपका काम, आपका जो भगवान के भक्तों के साथ में आप आदान प्रदान करते हो, मरीजों की सेवा करते हो, यहाँ पर आते हो, शिक्षा अष्टकम गाते हो, आप भोग लगा रहे हैं, ये सारा उत्सव ही उत्सव है। हर दिन नया है, कोई बोरिंग चीज़ है ही नहीं इसके अंदर। इसलिए भक्त जो है हमेशा प्रफुल्लित रहता है, क्योंकि भगवत भावना में हमेशा उत्सव मनाते रहता है। तो आइए हम भी आपको निमंत्रित करते हैं, सब लोग ऐसे चेतना में रहो कि हर रोज आपके लिए उत्सव है। कोई दुख, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कोई चिंता है ही नहीं कुछ, ऐसा होना चाहिए। अपनी सेवा में भगवान को देखें, अपने मरीजों में भगवान को देखें, अपने साथियों में भगवान को देखें। और अगर आप समझो मैं आप में भगवान को देखता हूँ तो मेरा व्यवहार भी वैसे होना चाहिए ना। मतलब मैं देख रहा हूँ दूर से, लेकिन जब मैं बोलता हूँ ए राम सिंह इधर आ जाओ क्या कर रहे हो, तो थोड़ी ये भगवान का व्यवहार है हमारा। अगर भगवान में, भगवान को हम किसी के अंदर देखते हैं तो तुरंत हमारा व्यवहार वो सिद्ध करेगा कि हाँ भाई मैं इसमें भगवान देख रहा हूँ। मेरा व्यवहार जो है, मेरा बात करने का तरीका है, जब सहयोग दे रहा हूँ मैं, कुछ प्रेम से बात कर रहा हूँ, वो उसका प्रमाण है, प्रूफ है उसका कि यस मैं आपके अंदर भगवान को देखता हूँ। दूसरा प्रमाण क्या है, जैसे भगवान को किसी के अंदर देखता हूँ मैं तुरंत उसका आदर करता हूँ, चाहे वो बाह्य दृष्टि से कोई चपरासी हो या और कोई चीज़ हो, कोई भंगी हो, लेकिन अगर मैं आपके अंदर भगवान देख रहा हूँ तुरंत रिस्पेक्ट, ये जो है सबसे पहला प्रमाण है उसका। अगर मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो मतलब मैं भगवान को देख रहा हूँ उसके अंदर, नहीं तो फिर वो कहने की और प्रवचन में बोलने वाले अच्छे अच्छे वचन है, प्रवचन में सुनते रहो और उसको भूल जाओ बाद में, ऐसा नहीं है, है ना। तो यही हमको सीखना है, काम करते करते भगवान के चरणों की प्राप्ति करनी हो सकता है, ऐसा नामुमकिन नहीं है। वाइल डूइंग एवरीथिंग इन द डे, एवरी सिंगल डे, एवरी ब्रशिंग टीथ ऑल्सो वन कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। इतना सुंदर मार्ग है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ऐसे भगवान स्वयं बोलते हैं। ये मार्ग जो है वो केवल सुख का नहीं है, सुसुखम है, मतलब अति सुख का मार्ग है ये। और अव्ययम, कभी उसमें समाप्ति नहीं है, कभी उसमें व्यय नहीं है, कभी खर्च नहीं है उसके अंदर। जो करेंगे वो तो अक्षय खाते में जाएगा आपके। हाँ, ऐसा कोई बैंक है क्या आप एक बार डालो परमानेंट हो जाएगा उधर ही हो, ऐसा नहीं होता है। वो कोई बैंक दुनिया में ऐसा नहीं है, एक ही भगवान है ऐसे, जिनके खाते में आप जो भी डालते जाओ वो कभी खत्म नहीं होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा, मतलब उसका कोई हिसाब नहीं है कैसे बढ़ता है वो, आप डाल के तो देखो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो हमारी माता जी को देखिए, हम कितने दिन से मेहनत कर रही है, पसीने से तर हो रही है, थक रही है, लेकिन सेवा कर रही है भगवान की, कोई कंप्लेंट नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, बोल नहीं रहे, हम देख रहे हैं तो बोल रहे हैं। तो भाव जो है ना, ये हमारे लिए बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण, आदर्श भगवान खड़े कर देते हैं। क्योंकि अच्छी अच्छी अवस्था में जब टेम्परेचर भी बढ़िया हो, जब सब साधन भी जुड़े हुए हो, लोग भी बने हो, सब लोग सेवा कर लेते हैं, लेकिन जब अच्छी सुविधा नहीं है, कोई साधन नहीं है, कोई लोग नहीं है, फिर भी सेवा करता है, वो सच्चा सेवक होता है। उसका उसको बोलते हैं अनकंडीशनल, मतलब अहैतुकी, कोई इसमें ये नहीं कि ऐसा होगा तो करूंगा, गाड़ी होगी तो प्रचार करूंगा माइक होगा तो लेक्चर दूंगा ऐसे चलेगा तो ही सेवा करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। चार लोग होंगे हाथ के नीचे तो मैं कुछ करूंगा, ये तो सब लोग कर सकते हैं, कोई भी कर सकते, कुछ बड़ी बात क्या है। लेकिन जब नहीं है, लेकिन फिर भी वो करता है, उसके ओर भगवान का ध्यान जो है आकर्षित होता है कि देखो मेरा भक्त जो है इतना कष्ट में है फिर भी मेरी सेवा कर रहा है। ऐसे कहते हैं कि जब कष्ट में सेवा करते हैं तो हजारों गुना लाभ होता है उसका, और सुख में सुविधा में भक्ति करना, भजन करना भी लाभ है, लेकिन कम लाभ होता है। जब प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान की भक्ति कोई करता है तो उसको अनंत गुना उसका लाभ मिलता है, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है जो कष्ट में करता है। जैसे अभी मम्मी को बोला जाए मम्मी 9 to 5 तो बढ़िया से काम करेगी वो, लेकिन वो 10 to 10 PM to 4 PM भी मम्मी को काम करना पड़ता है बालक के लिए, है ना, तो उसमें ज्यादा उसको प्रेम की प्राप्ति होती है। वो गलत समय पे, कष्टमय समय पे भी कर रही है सेवा, बालक की सेवा कर रही है ना, नींद खोके भी कर रही है, खुद भूखे रह के भी कर रही है, खुद बीमार होते हुए भी कर रही है, सब कुछ छोड़ के वो कर ही रही है बस, तो वो चालू है उसका, कुछ भी हो जाए, बाहर तूफान आए, आंधी आए, बालक की सेवा हो रही है। उस तरह से हमको अपने भगवान की सेवा करनी है, और जब ऐसी सेवा करेंगे तो भगवान आपसे दूर नहीं है, वो आपके पास ही है, आपको छोड़ेंगे नहीं, वो बनाए रखेंगे अपने चरणों में, अपने गोद में आपको, और सबको देखते हैं कौन क्या कर रहा है, किसकी भावना कैसी है, किसकी भावना में खोट है, किसकी भावना में श्रेष्ठता है, सब देखते हैं वो, सबको जानते हैं। हम सबको चीटिंग कर सकते हैं लेकिन उनको चीटिंग नहीं कर सकते, अपने आप को भी चीट कर सकते हैं, हाँ अपने आप को भी भ्रम में डाल के कुछ सोच सकते हैं, लेकिन उनको नहीं चीट कर सकते। श्री गुरुदेव और श्री भगवान को कोई चीटिंग नहीं कर सकता है, और बड़े बड़े डंडे पड़ते हैं उसके कोई छोड़ते नहीं है। हाँ भगवान की चक्की जो है ना बहुत बढ़िया पीसती है, धीरे धीरे पीसती है, लेकिन जब पीसती है ना बहुत महीन पीसती है कोई नहीं बचता है, ना बीच वाला बचता है ना साइड वाला बचता है, सबको पीसना है उसके अंदर। इसलिए उनके चरण में रहो, प्रामाणिकता से रहो, और सबके साथ प्रेम से रहो, सहयोग से रहो, क्योंकि वृंदावन का जीवन का एक लास्ट पॉइंट बताता हूँ, वृंदावन के जीवन का क्या स्थायी भाव क्या है उसका, कोऑपरेशन। आप नंद बाबा को देखिए, यशोदा मैया को देखिए, सखाओं को देखिए, सखियों को देखिए, कितना कोऑपरेशन है उनके अंदर, क्या देखते हुए कि ये जो लाला है ना इसकी हमको सेवा करनी है, उसकी सेवा के लिए सब लोग सहयोग दे रहे हैं। कोई बोलता नहीं, नहीं 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 मैं आरती करूंगी, तुम हट जा बाजू में, नहीं नहीं मैं ही चमर चलाऊंगी, तो क्यों तू कौन बड़ी गोपी है, हट जा यहां से, मैं ही चमर चलाऊंगी उसके ऊपर, देखो मैं कितने महीने से यहां पर सेवा कर रही हूँ, मेरा यहाँ पोजिशन है। ऐसा कोई है को गोलोक वृंदावन में, वृंदावन धाम में? आप कई कथा में पढ़ा है क्या, यशोदा का झगड़ा हुआ रोहिणी से और 4 दिन बात नहीं किया उसने रोहिणी से, फिर वो वसुदेव के पास गई, कंप्लेंट किया उसने, फिर वसुदेव आए समझाया उनको, फिर काम करने लगे, फिर भी मुंह का बेटा टेढ़ा करके बात कर रहे हैं, ऐसा कभी सुना है, कभी पढ़ा है आपने? हाँ मधुमंगल ने झगड़ा किया, बोले मैं ही गेंद खेलूंगा, तुम किसी को गेंद नहीं दूंगा, मैं उसके अकेले रहूंगा, हाँ ऐसा कभी होता है? अरे वो सब डब्बा लेके आते हैं, तुरंत तुरंत खोलते हैं, ठाकुर जी ले लो लो, ये खा लो ये खा लो, नहीं नहीं ये खा लो ये खा लो ये खा लो, तुरंत सबको सहयोग दे रहे हैं, खेल में भी, सब में, हर लीला में। ये वृंदावन का मूल स्थायी भाव है, सहयोग, ठाकुर जी के सेवा में सबको सहयोग और सबको आदर, सबका सम्मान, और सब हमारे लिए सबसे न्यूनता, हम सबसे नीचे, सब हमारे ऊपर। सखियां भी क्या करती है, राधा रानी क्या करती है, सबसे श्रेष्ठ सेविका है भगवान की, वो क्या करती है, ऐसा उनका हाथ है, क्या कहती है, देखो ये सब भक्त जो है ना मुझसे कई श्रेष्ठ भक्त हैं, देखो कन्हैया इन पर कृपा करो, सबको प्रस्तुत करती है, खुद को पीछे रखती है। सखिया क्या करती है, खुद जाके माला नहीं पहनाती है, बोले ले मैंने बाना बनाई है, ये तुम लो, तुम उनको पहना दो, फिर नहीं नहीं वो मैं गोपियों को दूंगी, फिर वो गोपियों को देते हैं, रघुबिया क्या कहते हैं, नहीं नहीं मैं नहीं पहनाऊंगी, मैं श्री जी को दूंगी, फिर श्री जी उनको पहनाएंगे, कोई सम्मान भी नहीं चाहता नहीं कि मैंने बनाया है, जरा ठाकुर जी को कान में बोलना, हाँ ये चंपक लड़ा दे बद्दा ने बनाया था, ठाकुर जी जरा बोल देना प्लीज, जरा उनको बोलना ये कचौरी मैंने बनाई थी, हाँ ऐसा कुछ नहीं है उधर, सब लोग ठाकुर जी की सेवा करने में लगे हुए हैं और सहयोग के साथ पूरा। उनको कष्ट भी होता है, उनको अगर कोई तकलीफ भी होती है तभी वो बोलते नहीं कभी, बस वो प्रसन्न हो जाए, बस मुझे कष्ट हो चलेगा, सहयोग देते सबको। तो ये सहयोग जो है वो गोलोक वृंदावन का वातावरण है, और वो सहयोग का वातावरण हम लोग यहाँ पर प्रकट कर सकते हैं अपनी इच्छा से, अपने त्याग से, अपने समर्पण से, अपने सम्मान से, अपने आदर से। यही चैलेंज है, प्रभुपाद जी ने वो करके दिखाया। उन्होंने कहा कि मैं ऐसा एक बनाऊंगा दुनिया जिसमें सब भक्त लोग, सब देश के, सब रंग के, सब भाषा के, हाँ सब कद के, अलग अलग प्रकार के लोग एकत्र होंगे, हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होगा। और हम देख रहे हैं हो रहा है। हाँ, एक वृंदावन में कितने देश के लोग रहते हैं देखो आप, घूम तो जरा, काले गोरे ऊंचे नाचे चपटे सब लोग रहते हैं, सब देश से आते हैं और एक ही नाम लेते हैं, एक ही भगवान की पूजा करते हैं। इसको कहते हैं सहयोग, कोऑपरेशन। भेद तो बहुत है हमारे अंदर, लेकिन समानता भी है ना हमारे अंदर। हाँ, कितने भेद होंगे, समानता तो हमारे अंदर है कि नहीं। वो समानता जो है वो कृष्ण भावना है, उसी को लेकर हमको चलना है, तब सबका जीवन यहाँ पर सुखी आनंदमय सुसुखम अव्ययम सब प्रस्तुत होगा आपके लिए। ठीक है, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की, श्री राधा श्याम सुंदर जी की, श्री वृंदावन धाम की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की, राधा रमन बिहारी लाल की जय हो। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है किसी का? एनी क्वेश्चन? हाँ, कौन सी? हाँ, वो मैं आपको टेप दे दूंगा, उसका रिकॉर्डिंग रेडी है, वो दे दूंगा आपको। भाई प्रभु जी ने बोला है कि हिंदी चाहिए तो मैं सब दे दूंगा जो भी है। और कहीं सबके क्या हुआ? हाँ, सबको सुना देंगे, बिल्कुल बिल्कुल सबके लिए दे दूंगा, अभी वो पूरा स्टॉक ही दे दूंगा उनको आज। हाँ, व्हाट इज दैट अगेन? हाँ, नो प्रॉब्लम, सॉल्व, कैन यूज इट द वे यू वांट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हरे कृष्णा।